यो ध्रुवेणात्मना नाथा आप फ्रेश हो जाइए बाद में यो ध्रुवेणात्मना नाथा न धर्मं न यश पुमान इहेत बुद्धय यास शोच्य स्थावरेरपि यो ध्रुवेणात्मना नाथा धर्मं न यश पुमान इहेत भूत दययास शोच्य स्थावरेरपि ठीक है। इसके शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा यह जो कोई अधुवेण अस्थाई आत्मना शरीर से नाथा हे देवो न नहीं धर्मम धार्मिक नियम न नहीं यश कीर्ति पुमान मनुष्य इहेत के लिए प्रयत्न करता है भूत दयया जीवों के लिए दया से स वह मनुष्य शोच्य शोचनीय स्थावरे जड़ जीवों के द्वारा अपि भी अनुवाद हे देवो जो न तो दुखी प्राणियों पर दया दिखाता है और न धार्मिक नियमों का अनुक्षण कीर्ति के महान कार्यों के लिए अपने नश्वर शरीर की बलि कर सकता वह निश्चित ही जड़ प्राणियों तक के द्वारा धिक्कारा जाता है। आइए मंगलाचरण करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यम् ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजे साद्वैतं सावधूतम् परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमो तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैवश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर हरे कृष्णा। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबर दारुण बिंब फल पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने किरात हूणा भ्रमुलिंद पुल आभीर कंका यवना खसादय ये च पापा यद पाश्रयाश्रया शुद्धयन्ति तस्मे प्रभविष्णवे प्रचोदिता जे न पुरा सरस्वती वितन्वता च ससतिं स्मृतिं हि स्वलक्षणा प्राप् दुर्भोत्किलासत समे ऋषभ प्रसीदता भूर्तेर महत भी ययमा पुरो विभु निर्माय शेते यदमोश पुरुष भूते गुणानशो दशोडशात्मक सुलंक श्रेष्ठ भगवान वचांसि।
आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रति गुरुवार इस भागवत सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज परम पवित्र दिन है। आज गोविंद घोष चैतन्य महाप्रभु के पार्षद गोविंद घोष का जन्मदिन है। चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का भाव लेकर दीवार का टेका मत लीजिए, नींद आ जाएगी। पेन है? ठीक है। भगवान श्री कृष्ण आज से 522 वर्ष पूर्व श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर इस धराधाम पर अवतरित हुए थे। भगवान जब इस धराधाम पर आते हैं तो उनके पार्षदों के साथ आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के कई कई पार्षद थे, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, श्रीवास पंडित इत्यादि। उन पार्षदों में एक पार्षद गोविंद घोष भी है और उस गोविंद घोष जी का आज जन्मदिन है, इसलिए आज का दिन बहुत पवित्र है। ये गोविंद घोष भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला में कलावती मंजरी थे है और भगवान की लीला में आज भी वे बहुत ही सुंदर गाना गाकर भगवान को प्रसन्न करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कई सारी गोपियां हैं जिनमें ललिता विशाखा है। तो विशाखा जी जो है वे गाना लिखती हैं और विशाखा सखी से लिखे हुए गाने यह कलावती नाम की मंजरी गाती है। बहुत ही सुंदर राग है, बहुत ही सुंदर कंठ के द्वारा भगवान को प्रसन्न करती रहती है। वही कलावती इस कलयुग में चैतन्य लीला में गोविंद घोष के रूप में प्रकट हुए और चैतन्य लीला में भी चैतन्य महाप्रभु को बहुत सुंदर सुंदर भजन और कीर्तन गाकर वे प्रसन्न करते थे। तो एक समय की बात, चैतन्य महाप्रभु वृंदावन यात्रा के लिए जा रहे थे और चैतन्य महाप्रभु कहीं भी जाते तो यह गोविंद घोष को साथ में रखते थे। कहीं भी जाते तो इनको साथ में रखते क्योंकि बहुत ही सुंदर गाना गाते थे। तो वृंदावन जा रहे थे, जाते जाते रास्ते में कई सारे गांव पड़ते थे और चैतन्य महाप्रभु किसी गांव में मधुकरी मांगकर भोजन करते तो भोजन करने के बाद चैतन्य महाप्रभु की हरड़े खाने की आदत थी। हरड़े जानते हो? जो पाचन। तो चैतन्य महाप्रभु भोजन के बाद अक्सर हरड़े खाया करते थे जिससे भोजन जो करते हैं वे पच जाते, डाइजेस्ट हो जाता है। वास्तव में भगवान को भोजन डाइजेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार में जितने भी जीव हैं, गीता में भगवान कहते हैं भोजन करने का काम आपका है, पचाने का काम मैं करता हूं। ये पचन थी क्योंकि हमारे शरीर में जब तक भोजन को पकाने की अग्नि नहीं, ज्वाला उठती है, तब तक वो भोजन डाइजेस्ट नहीं होता है। और गीता में भगवान कहते हैं भूमि राप नलो वायु खम मनो बुद्धि एवच। ये 10 प्रकार की भिन्ना शक्ति जो है, 8 प्रकार की, ये मेरी है। तो चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला में हरड़े खाया करते थे। तो भोजन करने के बाद एक दिन इस गोविंद को कहा कि गोविंद भोजन कर लिया हूं, अब मुझे हरड़े खाना है। तो गोविंद तुरंत दौड़े और गांव में किसी दुकान में जाकर एक हरड़े लेकर आए। चैतन्य महाप्रभु ने इसे खाया। दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु ने दोपहर को भोजन किया और भोजन करने के बाद हाथ मुंह धोकर गोविंद को कहे कि गोविंद जरा मेरे लिए हरड़े लेकर आओ। तो ये गोविंद गए तुरंत गांव में दौड़कर और हरड़े लेकर आए। तीसरे दिन चैतन्य महाप्रभु ने भोजन किया और भोजन करके हाथ मुंह धोकर गोविंद को कहा गोविंद जाओ जरा मेरे लिए हरड़े लेकर आओ। तो गोविंद अब दौड़कर गांव में नहीं गए। गोविंद ने अपने जेब में हाथ डाला और जेब में हाथ डालकर कई सारी हरड़े, मुझे क्या पता आप भी हरड़े के शौकीन हैं, ये लीजिए पान पराग। ऐसा नहीं कहा। गोविंद ने एक साथ 10-15 हरड़े निकाल कर दिया। वे दौड़कर गांव में नहीं गए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि 2 दिन आप गांव में जाकर हरड़े लेकर आते थे, आज क्यों जेब से हरड़े निकाल कर दिया? तब गोविंद ने चैतन्य महाप्रभु को इतना ही कहा कि हे प्रभु, आपको रोज हरड़े खाने की आदत है तो मैंने सोचा क्या रोज रोज दुकान में जाकर हरड़े लेने के लिए जाए, मैंने स्टॉक करके ही रख दिया है, आप जब भी मांगो मैं आपको दे दूंगा। चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत कहा कि गोविंद तुम अभी इसी समय से यहां पर घर पर लौट जाओ, क्योंकि जो व्यक्ति संग्रह करता है वह व्यक्ति कभी संन्यास नहीं ले सकता है, वह भजन नहीं कर सकता है। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु उससे बहुत प्रसन्न थे क्योंकि वो बहुत सुंदर भजन गाते थे, परंतु यह संग्रह करने की गलत गुण के कारण चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम सन्यासी नहीं बन सकते। तुरंत गोविंद को कहा कि तुम घर पर लौट जाओ। गोविंद चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य करके मायापुर में, बंगाल में नौ द्वीप है जिसमें अंतरद्वीप, नवद्वीप, गोद्रुम द्वीप, कई सारे द्वीप हैं, उनमें से एक द्वीप है अग्रद्वीप। यह गोविंद घोष चैतन्य महाप्रभु के कहने पर अग्रद्वीप में जाकर रहने लगे। अग्रदीप में जाकर रह रहे थे। कुछ दिन के बाद वह गंगा नदी में स्नान करने गए तो रात को स्नान कर रहे थे तो उसके पीछे पानी में तैरता हुआ एक लकड़ा आया और गोविंद घोष की पीठ में लगा। तो जैसे ही वो गोविंद घोष की पीठ में लगा, लकड़ा बहुत बड़ा था, गोविंद घोष उस लकड़े को लेकर घर पर आए। घर पर आए, घर पे आकर देखा तो वो लकड़ा नहीं, वो पत्थर था। अरे तो आश्चर्यचकित हो गए, इतना बड़ा पत्थर पानी में तैरता हुआ मेरे पास आया, और वो काले रंग का पत्थर था। गोविंद घोष समझ नहीं सके ये सब क्या हो रहा है। वे इस बात से चिंतित होकर सो गए और सोकर रात को 2 बजे भगवान गोविंद घोष के स्वप्न में आए। आकर कहे कि तुम्हें जो काले रंग का पत्थर इस गंगा नदी में मिला है, यह पत्थर तुम चैतन्य महाप्रभु को दे देना। इस प्रकार से भगवान कह के चले गए और चैतन्य महाप्रभु दूसरे दिन गोविंद घोष के घर पर आए और गोविंद घोष ने वो पत्थर दे दिया। चैतन्य महाप्रभु ने वह काले रंग के पत्थर को लेकर अपने हाथों से बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण की के विग्रह का प्राकट्य किया और भगवान के उस विग्रह का नाम दिया गोपीनाथ। और उस गोपीनाथ जी को गोविंद घोष को चैतन्य महाप्रभु ने अर्पण किया और कहा कि आज से तुम इस गोपीनाथ जी की सेवा करना। गोपीनाथ की कृष्ण की मूर्ति, कृष्ण का विग्रह देख महाप्रभु ने कहा कि भगवान की सेवा करने के लिए अकेला व्यक्ति भगवान की ठीक से सेवा नहीं कर सकता है, इसके लिए गृहस्थ जीवन चाहिए। अब जो सन्यासी है उसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा संग्रह नहीं करना चाहिए, और यदि संग्रह करता है तो वह बहुत बड़ी फजीहत में फंस जाता है। परंतु जो गृहस्थ है, संग्रह करने की आदत है, उसे गृहस्थ बनना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम एक पत्नी स्वीकार करो, विवाह करो, और विवाह करने के बाद तुम दोनों पति पत्नी इस गोपीनाथ जी की सेवा करना। चैतन्य महाप्रभु के कहने पर गोविंद घोष ने विवाह किया और विवाह करने के बाद आप सब जानते हो बच्चे तो हो नहीं है, गोविंद घोष को एक पुत्र उत्पन्न हुआ और पति पत्नी और बच्चे ये तीनों भगवान श्री गोपीनाथ की सेवा करते थे। कुछ सालों के बाद ये गोविंद घोष की पत्नी की मृत्यु हो गई और पत्नी के मृत्यु होने के बाद कुछ दिनों के बाद उनके पुत्र की भी मृत्यु हो गई। गोविंद घोष बहुत दुखी हुए, बहुत चिंतित हुए, और पुत्र की मृत्यु होते ही गोविंद घोष ने सोचा कि अब तो घर पर कोई रहा नहीं है, भगवान की सेवा अब तो ठीक से हो नहीं पाएगी। गोविंद घोष ने भगवान की सेवा करना बंद कर दिया, भगवान की आरती, पूजा, भोजन इत्यादि सब कुछ बंद। जब भगवान को यह भोग लगाना बंद कर दिया तो भगवान गोविंद घोष के स्वप्न में आए और कहे कि क्यों तुम मुझे भोजन देना बंद कर दिए। भगवान भी अपने भक्तों से भोग स्वीकार करने के इच्छुक होते हैं। गोविंद घोष ने कहा पत्नी की मृत्यु हो गई, पुत्र मर गया, अब आपकी सेवा कौन करेगा, क्यों आपकी सेवा करूं, यदि मेरा पुत्र होता तो मेरी बहुत सेवा करके देता, आप क्या करोगे मेरे लिए। भगवान ने इतना ही कहा गोविंद घोष को कि जिस व्यक्ति के 2 पुत्र होते हैं उनमें से 1 पुत्र मर जाता है तो क्या वह दूसरे पुत्र को भी भोजन देना बंद कर देता है, क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूं। गोविंद घोष ने कहा कि मेरा पुत्र मेरी सेवा करता था, मेरे काम में मुझे हेल्प करता था, आप थोड़ी ना मुझे हेल्प करने के लिए आएंगे। भगवान गोपीनाथ जी ने कहा आप मेरी सेवा करके तो देखो, मुझे सेवा का मौका तो दो, मैं दिखा दूंगा आपके पुत्र से भी मैं अच्छी सेवा करूंगा। तो उस दिन से गोविंद घोष ने गोपीनाथ जी की सेवा प्रारंभ की और सेवा प्रारंभ करने के कुछ सालों के बाद गोविंद घोष जी कुछ काम के लिए घर से बाहर गए थे। और उसी समय कई सारे साधु का टोला घूमते घूमते गोविंद घोष के घर पर आया। गोविंद घोष घर पर नहीं थे और साधु लोग घर पर आए थे। साधुओं की सेवा करना, अतिथि की सेवा करना एक गृहस्थ का धर्म होता है। तो गोपीनाथ जी ने देखा कि अतिथि घर पर आए हैं, तो गोपीनाथ जी ने एक बहुत ही सुंदर छोटे से बालक का रूप ले लिया और बालक का रूप लेकर सभी भक्तों का, सभी साधुओं का स्वागत किया, बिठाया। साधु ने कहा घर पे कोई नहीं है, तो गोपीनाथ जी जो बालक के रूप में थे कहा पिताजी कुछ काम के लिए बाहर गए, तो आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ व्यवस्था करता हूं। घर पे तो कुछ था नहीं, बाबा जी थे। तो गोपीनाथ जी उस बालक के रूप में गांव में गए बनिया के वहां, और वहां जाकर दूध मांगने गए कि मुझे दूध दीजिए, घर पर मेहमान आए। कहा कि दूध के लिए, दूध लेने के लिए पैसा पैसा रखो, बाद में दूध मिलेगा। तो भगवान ने कहा उस बालक के रूप में, मेरे पिताजी गोविंद घोष जी बाहर गए हैं, वे आएंगे तो आपको पैसा दे देंगे। दुकान वाले ने कहा, लगाते हैं ना बोर्ड, उधारी किसी को नहीं देना है। दुकान वाले ने कहा उधार हम किसी को नहीं देते हैं, अब क्या करें। तो उस बालक ने अपने हाथ में जो अंगूठी पहनी थी, भगवान की दिव्य अंगूठी, वे अंगूठी उस दूध वाले को दे दी और दूध वाले को कहा कि ये अंगूठी रखिए, आप मुझे दूध दे दीजिए, मेरे पिताजी जब आएंगे तो आपको इस दूध का पैसा वापस लौटा देंगे और आप वो अंगूठी मेरे पिताजी को वापस दे देना। वैसे भगवान अपनी अंगूठी दे दिए, दूध लेकर घर पर आए। घर पे आकर खीर बनाए, अतिथियों का सत्कार किया। अतिथि जब चले गए तो भगवान अपने विग्रह के रूप में हो गए, विग्रह के रूप में हो गए। वह गोविंद घोष दूसरे गांव से जब घर पर आ रहे थे तो ये दुकान रास्ते में पड़ती थी, तो दुकान वाले ने, उस दूध वाले ने गोविंद घोष को बुलाया, यहां पर आओ, आपको मुझे आपका लड़का 3 लीटर दूध ले गया है और 1 लीटर दूध का भाव 22 रुपये है, 66 रुपया मुझे देना है आपको। गोविंद घोष ने कहा कि मेरा पुत्र मर गया 6 साल हुआ, आप उसके श्राद्ध में भी आए थे, पता नहीं है आपको। उसने कहा विश्वास करो, आपका लड़का आया था और इस दुकान से दूध लेकर गया। गोविंद घोष ने कहा अरे भाई मेरा लड़का तो कितने दिनों से मर गया है, वे कैसे आएगा। दूध वाले ने कहा आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, नहीं है। दूध वाले ने कहा रुको, वो जो अंगूठी दी थी, अंगूठी उन्होंने निकालकर गोविंद घोष को दिया, देखो ये अंगूठी आपका लड़का देकर गया है और उसने कहा है कि मेरे पिताजी पैसे देंगे तो उसको ये अंगूठी दे देना। गोविंद घोष के हाथ में जब वो अंगूठी थी तब गोविंद घोष ने देखा कि यह अंगूठी मैंने मेरे विवाह में गोपीनाथ जी के हाथ में पहनाई थी और निश्चित रूप से गोपीनाथ ही बालक का रूप लेकर, मेरे पुत्र का रूप लेकर यहां पर आए, इसको अंगूठी दिए और अतिथियों की सेवा किए हैं। गोविंद घोष जी बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने एक पुत्र का काम किया भगवान ने। और इतना ही नहीं, गोविंद घोष की जब अंतिम समय था तो गोविंद घोष ने अपने गांव वालों में रहने वाले कई लोगों को कहा कि मेरे शरीर को जलाना मत, मेरे शरीर को इस मेरे घर में आगे दफना देना, समाधि बनाना। तो गोविंद घोष की मृत्यु हो जाने के बाद उनका जो क्रिया कर्म होता है उनके पुत्र करते हैं, तो गोविंद घोष की मृत्यु हो जाने के बाद गोविंद घोष का जो क्रियाक्रम जो भी है संस्कार, ये भगवान गोपीनाथ जी ने किया। भगवान गोपीनाथ जी ने गोविंद घोष का श्राद्ध किया और आज भी गोविंद घोष के डिसअपीयरेंस, गोविंद घोष के तिरोभाव के दिन भगवान स्वयं उस अग्र द्वीप में जहां पर हम इस बार जाकर आए 1 महीने पहले, आज भी भगवान गोपीनाथ वहां खड़े रहकर गोविंद घोष का आज भी श्राद्ध करते हैं। भगवान स्वयं लोगों को खिलाते हैं अपने इस गोविंद घोष के लिए। वही गोविंद घोष का आज जन्मदिन है। तात्पर्य यही है भक्तों, इस संसार में इस भौतिक पत्नी और पत्नी बच्चों में आसक्ति रखने से बहुत अच्छा है भगवान को पुत्र बनाकर पुत्र मानकर उसमें आसक्त रहना। यदि हम हमारे पुत्र में आसक्त रहेंगे तो हम नरक में जाएंगे, परंतु यदि भगवान को पुत्र बनाकर उसमें आसक्ति रखेंगे तो वह आसक्ति हमें भगवान का धाम दे सकती है। तो ये गोविंद घोष की संक्षिप्त लीला है, आज के दिन का महात्म्य है। तो श्रीमद् भागवत का श्रवण हम नित्य कर रहे हैं, जिस श्लोक का उच्चारण हमने किया, यो ध्रुवेणात्मना नाथा न धर्मम न यशः पुमान। ये बास बंद कर दो, बास। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे, कुछ गड़बड़ हो गया आज। हरे कृष्णा ठीक। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। देवतागण दधीचि ऋषि के पास आए हैं, वृत्तासुर नाम का असुर प्रकट हुआ है इस संसार का विनाश करने के लिए। उस वृत्तासुर से रक्षा प्राप्त करने के लिए भगवान के कहने के अनुसार इंद्र समेत सभी देवतागण दधीचि ऋषि के पास आए हैं। दधीचि ऋषि को के सामने प्रस्ताव रखे, कृपया करके हमारी रक्षा के लिए, ये संसार की रक्षा के लिए आप अपना शरीर हमें दे दीजिए, क्योंकि आपके शरीर में जो हड्डी है उस हड्डी से हम वज्र बनाना चाहते हैं। जब दधीचि को इस प्रकार से कहा गया तो दधीचि ने पहले ना कह दिया, अरे इस संसार में, इस शरीर में थोड़ी सी भी चोट आ जाती है तो व्यक्ति कितना दुखी होता है। आप लोग मेरी हड्डी लेने के लिए आए हो, जानते हो इसमें कितना दुख और दर्द है। और मांगने से पहले सोच तो लो, कोई अपना शरीर दे सकता है इस प्रकार से? 10 रुपया 5 रुपया या 5 लाख मांगा होता तो दे देता, शरीर ही कोई दे देगा अपना? इस संसार में मृत्यु कितना भयावह है, मृत्यु में कितना दुख और दर्द है, क्या आप नहीं जानते हो? देवताओं ने बहुत बहुत उपदेश दिया दधीचि ऋषि को। वास्तव में दधीचि ऋषि की इच्छा थी कि वे देवताओं के लिए अपना शरीर दे दे, इसलिए दधीचि ऋषि कहते हैं कि धर्मम व श्रोतु कामेन युयम मे प्रत्युदाहरिता एष व प्रियमात्मानं त्यजन्तं संत्यजात्महम्। दधीचि ऋषि ने कहा कि वास्तव में मैं मेरा शरीर आपको प्रदान करना चाहता हूं, परंतु हे देव हे देवतागण, मैं आपके मुख से धर्म का उपदेश सुनना चाहता था, इसलिए मैं आपको ना कर रहा हूं। इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो दूसरों के सुख के लिए अपने सुख को नहीं त्यागेगा? जो व्यक्ति दूसरे के सुख के लिए अपने सुख को नहीं त्यागता है, दूसरे के भले के लिए जो व्यक्ति काम नहीं करता है, जो व्यक्ति पर उपकार नहीं करता है, वह व्यक्ति संसार में धिक्कारने योग्य है। जड़ व्यक्ति भी, जड़ पशु भी ऐसे मनुष्य की भर्त्सना करते हैं। इसलिए द्वार पर आए हुए लोगों को यदि कोई मांग रहा है तो उसे निश्चित रूप से देना चाहिए, और कोई व्यक्ति शरणागत होकर यदि कोई कुछ मांग रहा है तो उसे कभी घर की चौखट से वापस नहीं भेजना चाहिए। दधीचि ऋषि बहुत ही सुंदर कह रहे हैं, कोई व्यक्ति मांग रहा है और यदि उस मांगने वाले व्यक्ति की इच्छा को कोई पूर्ण नहीं करता है तो न धर्म, वो व्यक्ति धार्मिक नहीं है, वे धर्म का पालन नहीं कर रहा है। धर्म वह है जो किसी के उपकार के लिए, परोपकार के लिए अपना जीवन भी देना पड़े तो दे दे। सूर्य वंश में एक बहुत ही सुंदर राजा हुए जिसका नाम था हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र का नाम लेते ही आगे सत्यवादी हरिश्चंद्र कहा जाता है। राजा हरिश्चंद्र के स्वप्न में विश्वामित्र जी आए राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में विश्वामित्र को ये सारा भूमंडल दान में दे दिया। हरिश्चंद्र इस पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे और सारा भूमंडल विश्वामित्र को दान दिया। सुबह उठकर देखा तो ऐसा कुछ था ही नहीं, लेकिन स्वप्न में दान दिया है। राजा हरिश्चंद्र ने सोचा, स्वप्न में भी यदि मैंने किसी को वादा किया है तो वह निभाकर रहूंगा। इतने अपने सत्य वचन पर निष्ठ थे। और राजा हरिश्चंद्र सुबह उठकर यह विलाप करने लगे कि शायद वो विश्वामित्र जी मेरे इस राजमहल में आ जाए तो यह पूरा पृथ्वी पूरा भूमंडल में उसको दान में दे दूं। तो उतनी ही देर में विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र के राजमहल में आए और हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी को कहा कि मैं यह पूरा भूमंडल आपको दान देना चाहता हूं। हरिश्चंद्र ने हाथ में जल लेकर संकल्प किया कि हे विश्वामित्र, आज से ये पूरा भूमंडल मैं आपके नाम पर कर रहा हूं। आज से ये पूरा भूमंडल आपका हुआ, ये सब मैंने आपको दान में दिया। तब विश्वामित्र ने कहा कि राजन, आपने मुझे दान तो दिया परंतु दक्षिणा नहीं दी, और जब तक दक्षिणा नहीं दी जाती है तब तक दान की कोई महिमा नहीं। किसी ब्राह्मण को आप अपने घर पर बुलाओ और कितना भोजन कराओ, कितना भी भोजन कराओ, परंतु जब तक उसके जेब में 50 या 100 रुपये नहीं देंगे तब तक वो प्रसन्न नहीं होंगे। दान के साथ दक्षिणा का बहुत महिमा है। जब तक दक्षिणा नहीं दी जाती है तब तक दान का पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो विश्वामित्र जी ने कहा, दान तो दिया परंतु दक्षिणा नहीं दी। राजा हरिश्चंद्र कहा कि क्या चाहिए आपको दक्षिणा में? विश्वामित्र जी ने कहा कि मुझे 100 सोना मोहर चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा 100 सोना मोहर। तुरंत राजा हरिश्चंद्र ने अपने सैनिकों को बुलाया, खजांची को बुलाकर कहा कि अपने खजाने से इस विश्वामित्र को 100 सोना मोहर दे दो। विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को सावधान किया कि राजन, तुम सावधान हो जाओ, तुमने यह पूरा भूमंडल मुझे दान में दिया है और यह सोना मोहर इसी भूमंडल से आप मुझे दान में दे रहे हो, एक ही चीज दूसरी बार? क्या यह सोना मोहर इस भूमंडल के बाहर की चीज है? यदि तुम है मुझे सोना मोहर देनी है तो इस पृथ्वी से बाहर जाओ और बाहर से कमाकर मुझे यह सोना मोहर दो, तब जाकर आपकी यह दक्षिणा पूर्ण होगी। राजा हरिश्चंद्र बहुत ही बड़े धर्म संकट में, परंतु राजा हरिश्चंद्र जानते थे कि काशी नाम का जो शहर है, यह काशी नगरी इस भूमंडल का अंश नहीं है, क्योंकि काशी नगरी जो है शंकर भगवान के शिव जी के त्रिशूल के ऊपर है। काशी नगरी इस पृथ्वी का अंश नहीं है। और वैज्ञानिक लोग भी इस बात को साबित करते हैं, इस संसार में इस भूमंडल में कई कई जगहों पर भूकंप आता है, परंतु आज तक काशी नगरी में भूकंप नहीं आया है, क्योंकि वे इस पृथ्वी का पार्ट नहीं है, ये शिव जी के त्रिशूल के ऊपर बसा हुआ। राजा हरिश्चंद्र तुरंत अपना राज रचवा रजवाड़े नौकर चाकर सबको छोड़कर अपनी पत्नी तारामती और अपने पुत्र रोहित को लेकर इस काशी में चले गए। और काशी में जाकर राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को बेच दिया, अपने पुत्र को बेच दिया और वे स्वयं बिक गए। और तीनों बेचने के बाद जो भी धन आया वे विश्वामित्र को दान दक्षिणा में दे दिया। आगे चलकर राजा हरिश्चंद्र एक दोम के वहां शमशान में जो लकड़े बेचते हैं वहां पर शमशान में राजा हरिश्चंद्र नौकरी करने लगे, उसके हाथ में बिके और उनके पुत्र को और पत्नी को मालिनी के वहां बेच दिए। एक समय की बात, राजा हरिश्चंद्र के पुत्र को सर्प ने काट लिया और पुत्र की मृत्यु हो गई। एक तो राज्य से निकलने का दुख तारामती को था, दूसरा दुख अपने पुत्र की मृत्यु। उस दिन अपने राजा हरिश्चंद्र के पुत्र को कि शमशान यात्रा करने वाला कोई नहीं था। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी ही तारामती अपने पुत्र को गोद में लेकर शमशान में आई और शमशान में आकर अपने पति, क्योंकि दूसरे के हाथ में बिक गए थे, वे तो दूसरे के अंडर में थे, उसने कहा कि पतिदेव हमारे पुत्र की मृत्यु हो गई है, इसके लिए तुम थोड़े लकड़े दो क्योंकि इसके अग्नि संस्कार कर सके। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मुझे दोम ने कहा है, जिसका मैं नौकरी कर रहा हूं, उन्होंने कहा है कि किसी को मुफ्त में लकड़े नहीं देना है, धन लेकर ही तुम्हें लकड़े देना है, इसलिए तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे तब जाकर मैं तुम्हें लकड़े दूंगा। अपने सत्य पर इतने निष्ठ थे, उसकी जगह हम होते तो रोज चार पांच लकड़े बेच बेच कर धन एकत्रित कर देते, थोड़ा सेटिंग कर देते अपना साइड इनकम, परंतु ऐसा नहीं, सत्यवादी थे। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी रोने लगी कि तुम कितने निष्ठुर हो, अपने पुत्र की मृत्यु हो गई है फिर भी आप इस प्रकार से कठोर बन रहे हो। और राजा हरिश्चंद्र की पत्नी ने कहा कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए क्या है कि जिससे मैं आपको धन देकर आपसे लकड़े खरीद सकूं। राजा हरिश्चंद्र ने कहा ये साड़ी तो पहनी है, कल्पना करो उस दिन राजा इस भूमंडल के चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी अपने पुत्र को देह संस्कार करने के लिए केवल एक वस्त्र पहना था, उस वस्त्र को फाड़ आधा वस्त्र करके वह हरिश्चंद्र को देने लगी। जब तारामती अपनी साड़ी को फाड़कर हरिश्चंद्र को देने लगी, नहीं रहा गया भगवान से, भगवान विष्णु प्रकट हुए, इंद्र प्रकट हुए और विश्वामित्र प्रकट हुए और प्रकट होकर हरिश्चंद्र को कहा, बस हरिश्चंद्र बस, तुम्हारे सत्य की प्रतिज्ञा परीक्षा लेने के लिए हम सबने यह व्यूह रचा था, तुम हमारी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, पास हुए और इस प्रकार से आगे चलकर भगवान ने राजा हरिश्चंद्र के पुत्र को जीवित किया और फिर से राजा हरिश्चंद्र को अपना राज्य दिया। तात्पर्य यह है कि राजा हरिश्चंद्र ने एक ऋषि को सपने में दान दिया था और एक साधु के कहने पर वे स्वयं बिक गए। दूसरों के लिए अपना जीवन देना, यही जीवन की सार्थकता है। वास्तव में बड़ा व्यक्ति वह नहीं है जिसके पास करोड़ों करोड़ों रुपये हैं। एक बहुत ही बड़े महान भक्त हुए हनुमान प्रसाद पोद्दार, जो गीता प्रेस के गीता भवन में रहते हैं, एक जगह पर बहुत ही सुंदर बात लिखते हैं कि महान व्यक्ति वह नहीं है जिसके पास बहुत धन है, महान व्यक्ति और कृपाशाली व्यक्ति, सिद्ध व्यक्ति वह नहीं है जिसके पास बहुत बहुत धन है, जिसके पास करोड़ों रुपये हैं। महान व्यक्ति वह है यदि वह झोपड़ी में भी रहता हो परंतु एक रुपया भी किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल करे, वे उस करोड़ोंपति से विशेष है, विशेष महान। दूसरों के लिए अपना जीवन दे देना, यही जीवन की सार्थकता है। पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। ये साधु का, संत का स्वभाव होता है कि वे दूसरों के ऊपर उपकार करते हैं, दूसरों के लिए उपकार करने में अपना सब कुछ देना पड़े, पत्नी और बच्चों को बेच देना पड़े, स्वयं बिकना पड़े तो एक बार बेच देना चाहिए, परंतु दूसरे के ऊपर उपकार करना नहीं भूलना चाहिए। दधीची और देवताओं के प्रसंग में यह शिक्षा हमें प्राप्त होती है और ऐसे लोगों की भगवान भी प्रशंसा करते हैं। करोड़ों करोड़ों रुपये होने से भगवान प्रसन्न नहीं हो जाते हैं, दिन रात मेहनत करके यदि हम धनी बन जाते हैं, भगवान इससे प्रसन्न नहीं है, भगवान प्रसन्न उससे हुए कि व्यक्ति दूसरों को कितना दे रहा है। जो व्यक्ति देता है भगवान उससे प्रसन्न रहते हैं, इसलिए भगवान स्वयं अपने मुख से यह सब भक्तों की गाथा गाते हैं। रामायण में भगवान रामचंद्र स्वयं अपने मुख से कहते हैं,
शी
हरिश्चंद्र नरेशा सहेउ धर्म हित कोटि कलेशा।
ये शिबी दधीची हरिश्चंद्र ऐसे बड़े बड़े महाराजा दूसरों के ऊपर उपकार करने के लिए करोड़ों करोड़ों दुख भी सहना पड़े सह लिया, अपना शरीर भी देना पड़े दे दिया, परंतु उपकार करना नहीं भूले। भगवान अपने मुख से कहते दधीची हरिश्चंद्र और शिबी। शिबी राजा की कथा आप जानते हैं। शिबी राजा बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे, और यह भी सूर्य वंश में जितने जितने राजा हो गए वे बहुत धर्मनिष्ठ हुए। ये राजा शिबी उसी नर राजा के पुत्र थे और चक्रवर्ती सम्राट थे, और उनके गुण की महिमा त्रिभुवन में फैल रही थी। राजा शिबी शरणागत वत्सल थे, भगवान के महान भक्त थे, परम उदार थे, कई गुण थे। और राजा शिबी की परीक्षा लेने के लिए 33 करोड़ देवताओं ने मीटिंग किया कि यह राजा शिबी की महिमा तीनों भुवन में फैल रही है, उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वास्तव में जो भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, उनकी परीक्षा निश्चित रूप से होती है। भजन करने वाले को भगवान ज्यादा दुख देते हैं, भगवान देखना चाहते हैं कि ये भक्ति में कितना आगे। इसलिए पद्म पुराण में भगवान ने बहुत सुंदर एक जगह पर लिखा है, कहा है कि यस्या अहम अनुग्रहणामि, मैं जिस भक्त के ऊपर कृपा करता हूं। भगवान का भजन जो व्यक्ति करता है और भजन करते करते वे दृढ़ बन जाता है, तब भगवान उसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। और भगवान कहते हैं यस्या अहम अनुग्रहणामि, जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूं, तो कृपा करके सबसे पहले मैं क्या करता हूं, हरिष्ये तद धनम शने, सबसे पहले मैं उसका सारा धन लूट लेता हूं, सारा धन समाप्त हो जाता है। या तो बिजनेस में लॉस हो जाता है, या तो कोई उठ जाता है, या कुछ। ये भगवान की परीक्षा समझो। भगवान कहते हैं सबसे पहला क्वेश्चन पेपर ये है, सबसे पहली परीक्षा उसका धन मिटा देता हूं। और धन चले जाने के बाद भी यदि कोई मेरी शरण छोड़ता नहीं, कुछ लोग होते हैं धन चला जाते हैं तो भक्ति छोड़ देते हैं, ये भगवान भी कुछ ध्यान नहीं रखते, छोड़ो सब। तो भगवान सोचते हैं ये कच्चा है, छोड़ो इसको। हाँ सही बात है, कुंभार भी जब मट्टी का घड़ा बनाता है तो मट्टी का घड़ा बनाकर उसको टोकता है, इसे मारता है। जब तक मारेगा, परीक्षा नहीं होगी तब तक पता नहीं चलेगा ये ठीक है या कैसा। तो भक्त को देखने के लिए भी भगवान परीक्षा लेते हैं। तो पहली परीक्षा क्या है हमारे जीवन में, धन चला जाता है। और केवल इतना ही नहीं, उसके ऊपर जब वो मेरा शरण पकड़ कर रखता है तो दूसरा क्वेश्चन पेपर, दूसरी परीक्षा, तस्या आम अनुग्रहणामि हरिष्ये तदनम शने स्वजना, दूसरा क्वेश्चन पेपर, दूसरी कृपा क्या करता हूं, उनके कुटुंब में, उनके फैमिली में मैं दुख देता हूं। या तो उनकी कुटुंब में किसी के साथ झगड़ा करवा देता हूं, फैमिली में कोई उसका पूछेगा नहीं, कोई उसके सामने देखेंगे नहीं, समाज वाले उसको कुछ पूछेंगे नहीं, या घर पर इतना बड़ा विघ्न दे देता हूं, किसी की मृत्यु हो जाएगी, जैसे गोविंद घोष की पुत्र की मृत्यु, पत्नी की मृत्यु हो गई। ये भगवान की परीक्षा है, ये भगवान कहते हैं। और फिर भी यदि कोई मेरा शरण पकड़ कर रखे, कुछ लोग होता है घर पर पत्नी के साथ झगड़ा, समाज वाले गाली देते हैं तो छोड़ देते, छोड़ो भजन भक्ति, परंतु फिर भी कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में दृढ़ रहता है तो भगवान कहते हैं फिर वो पास हो जाएगा। और इतना इतना दुख देने के बाद भी यदि कोई मेरी भक्ति नहीं छोड़ता है तो मैं उसे ऐसी चीज देता हूं जो देवानाम अपि दुर्लभम, करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद भी देवता उस स्थान को प्राप्त नहीं करते हैं, ऐसा स्थान में गोलोक वृंदावन उसे दे देता हूं। हरे कृष्णा तो भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। प्रश्न पूछने की प्रथा बाद में है। तो राजा शिव भी बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे।
आप इतने साल से आते हो, आपको इतना पता नहीं?
हरे कृष्णा 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 हरे। सभी देवता लोगों ने मीटिंग की कि शिवी राजा की कीर्ति त्रिभुवन में फैली है, तो जरा उसके गुण की परीक्षा लेनी चाहिए। कौन जाए उनकी परीक्षा लेने के लिए? सभी देवताओं ने एक स्वर से कहा कि अग्नि देव आप जाओ और इंद्र आप जाओ और इसकी परीक्षा लेकर आओ। बहुत कड़ी परीक्षा। अग्नि देव कबूतर बने और इंद्र बाज बने। यह बाज कबूतर को मारने के लिए उसका पीछा करने लगा और कबूतर उड़ते 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 राजा शिवी अपने राज सिंहासन पर बैठे थे, कबूतर उड़ते उड़ते उनकी गोद में आकर बैठ गया और मनुष्य की भाषा में बोलने लगा, राजन राजन मेरी रक्षा करो, त्राही माम मेरी रक्षा करो, मैं आपके राज्य का पंछी हूँ और बाज मेरा पीछा कर रहा है मुझे मारने के लिए, मैं आपके शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करो। तुरंत बाज उड़ते उड़ते वहां पर आया, कहा राजन उस कबूतर को छोड़ो, ये मेरा भोजन है, मैं भी आपके राज्य का पंछी हूँ, मेरे भोजन पर राजन आपको विघ्न नहीं देना चाहिए। राजा धर्म संकट में, कबूतर कहता है मेरी रक्षा करो, ये बाज कहता है मेरा भोजन दो। राजा कहे क्या करो? बाज कहता है मेरा हिस्सा मुझे दो और कबूतर राजा के शरण में है। राजा ने सोचा क्या करे क्या करे, तब राजा के मन में विचार आया, यो ही कश्चित द्विजान हन्याद गांवा लोकस्य मातरम शरणागतम च त्यजेत तुल्यम तेषा हि पातकम्। राजा ने सोचा कि जो व्यक्ति ब्राह्मण की हत्या करता है, जो व्यक्ति गाय की हत्या करता है और जितना पाप लगता है, ब्राह्मण की हत्या करता है और जितना पाप लगता है, उतना ही पाप शरणागत में शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा नहीं करने से लगता है। यदि कोई हमारी शरण में आया है, कुछ धन मांग, एक रुपया दो रुपया मांग रहा है और या रक्षा मांग रहा है और उनकी रक्षा हम नहीं करते हैं, तो गाय को मारने जितना पाप लगता है, ब्राह्मण को, गो ब्राह्मण को मारने जितना अपराध लगता है। तुरंत राजा शिवी ने उस बाज से कहा कि ये कबूतर मैं आपको नहीं दूंगा, कबूतर के बदले में आपको जो चाहिए वो मांग लो। बाज ने कहा मुझे तो खाने से मतलब है, यदि ये कबूतर आप नहीं खाने दोगे तो आप एक काम करो, आपका मांस मुझे दे दो, मैं खा लूंगा। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने कहा एक बहुत ही बड़ी तराजू मंगाया और तराजू के एक पलड़े में कबूतर को रखा और एक पलड़े में राजा ने अपनी जंगा से, तलवार से, सबके सामने देखते देखते अपने मांस को काटकर दूसरे तराजू में रखा। लेकिन तराजू में रखकर वो बाज का वजन ज्यादा था, दूसरे पांव की जंगा को काटकर राजा ने रखा, बाज का वजन ज्यादा रहा। राजा ने अपने दोनों पांव काटकर उस तराजू में रखे, लेकिन फिर भी बाज का वजन ज्यादा रहा। राजा ने सिपाहियों को बुलाया और कहा कि मेरे दोनों हाथ काटकर उस तराजू में रख दो। राजा के दोनों पांव और दोनों हाथ उस तराजू में रखा, फिर भी उस बाज का वजन ज्यादा, कबूतर का वजन ज्यादा रहा, क्षमा कीजिए, फिर भी वह कबूतर का वजन ज्यादा रहा। अब क्या करें? तब राजा ने सोचा कि हे बाज, धन्य हूं मैं आज कि आज मेरे यह प्राण, आज मेरा यह शरीर दूसरे के उपकार के लिए जा रहा है। जब राजा के दोनों हाथ और पांव से वह कबूतर की तुलना नहीं हुई, तब राजा सैनिकों को कहे कि अब मेरे सिर को काटो और मेरा सिर और धड़ दोनों इस तराजू में रख दो और इस बाज को दे दो। सैनिक जैसे ही गला काटने गए और राजा को उस तराजू में रखने गए, तब कबूतर और बाज दोनों प्रकट हुए। ये दोनों और कोई नहीं, इंद्रदेव और अग्निदेव थे। और राजा को कहे कि राजन आप हमारी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, पास हुए, तात्पर्य यह है कि देने की भावना होनी चाहिए। एक राजा एक तुच्छ कबूतर की रक्षा करने के लिए अपना शरीर दे देते। यहां देवतागण दधीची ऋषि का शरीर मांगने आए हैं। भक्त का स्वभाव है, दधीची भगवान के परम भक्त हैं और परम भक्त होने के नाते दधीची अपना शरीर देने के लिए तैयार हुए और दधीची ऋषि ने बहुत ही सुंदर प्रकार से अपने शरीर को त्यागा। दधीची किस प्रकार से अपने शरीर को त्यागेंगे ये हम अगले गुरुवार को चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा तो इस प्रकार से इस प्रसंग से हमें यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे पास कोई भी व्यक्ति कुछ मांगने आता है, हमारी शरण में रक्षा के लिए आता है, तो हमें कभी भी पीछे हट नहीं करना चाहिए। परोपकार, और सबसे बड़ा परोपकार क्या है? किसी को धन दे देना यह सबसे बड़ा परोपकार नहीं है। किसी के लिए कॉलेज बना देना, स्कूल बना देना, हॉस्पिटल बनाना, ये सबसे बड़ा परोपकार नहीं है। सबसे बड़ा परोपकार है किसी को भगवान की भक्ति प्रदान करना। मैं आपको एक दृष्टांत दूं। एक व्यक्ति सो रहा है और सोते हुए स्वप्न देख रहा है कि स्वप्न में चार लोग मेरी पिटाई कर रहे हैं और पिटाई करने के लिए आए, तो वह सो रहा है, स्वप्न में ये हो रहा है, बाहर से ऐसा कुछ नहीं है। तो स्वप्न में पिटाई हो रही है तो कह रहा है बचाओ बचाओ बचाओ, और ये आवाज बाहर वाले सुन रहे हैं। ठीक है, बाहर से कोई नहीं मार रहा, स्वप्न में उसे चार लोग पीट रहे हैं और ये बचाओ बचाओ बोल रहा है। तो बाहर एक व्यक्ति ने यह आवाज सुना बचाओ, तो बाहर वाले व्यक्ति ने आवाज सुनकर डंडा लिया और डंडा लेकर वह सोचने लगा कि अब ये बचाव बोल रहा है इसलिए इसे बचाना पड़ेगा। तो बताओ वो कैसे बचाएगा उस व्यक्ति को? उस व्यक्ति को पीटेगा तो बेचारा और दुखी होगा। तो वह व्यक्ति स्वप्न देख रहा है, स्वप्न में उसे मार रहे हैं, उसे बचाने के लिए सबसे अच्छा उपाय कौन सा है बताइए, आप ही बताइए। हाँ, प्रभु जी कह रहे उसे जगाना चाहिए, उसको डंडा लेकर उसकी पिटाई नहीं करनी चाहिए, या और किसी भी प्रकार से उसे आप सपोर्ट कर ही नहीं सकते हैं, उसे जगाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार यह संसार और इस संसार रूपी जगत में हम सब लोग, हमारा जीवन एक स्वप्न के समान है और इस संसार में जो भी सुख दुख ये जो भी है ये स्वप्न में सुख दुख के समान है। तो यदि कोई संसार में कुछ चीज से दुखी है, धन से दुखी है, तबीयत से दुखी है तो डंडा लेकर उसे ठीक नहीं करना चाहिए, उसे जगाना चाहिए कि आप स्वप्न में हो, वास्तविक ये हमारी स्थिति नहीं है। जीवेर स्वरूप हो नित्य कृष्णदास, उसे जगाने का अर्थ है उसे वास्तविक ज्ञान देना चाहिए और वास्तविक ज्ञान है भगवान की भक्ति। तो बुद्धिमान व्यक्ति डंडा नहीं उठाता है, बुद्धिमान व्यक्ति प्रचार करता है, कृष्ण भावनामृत दूसरों को प्रदान करता है, दूसरों को भक्ति करना सिखाता है। और दूसरों को भक्ति करना हम तब सिखा पाएंगे जब हम स्वयं करेंगे। भारत भूमि ते हैले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है अमार आज्ञा है तार यही देश, यह देश को तारो प्रचार करो, यह मेरी आज्ञा है, परंतु सबसे पहले जन्म सार्थक करी, अपना जन्म सार्थक करो, बाद में परोपकार करो। परोपकार करने के लिए भी सबसे पहले हमारा उपकार तो होना चाहिए, हमारा सार्थक जन्म होगा तब जाकर दूसरों पर उपकार कर सकते। अब कोई व्यक्ति आपके पास कुछ भीख मांगने के लिए आया, आपसे 10 रुपया मांग रहा है, जब आपके जेब में 10 रुपया हो तो आप दूसरों के ऊपर उपकार करेंगे? कुछ है ही नहीं, कोरा है जेब, खाली है, तो क्या उपकार करेंगे? उपकार करने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो उसके लिए भक्ति चाहिए। इसलिए हम सबको भजन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति का अर्थ कोई इतना नहीं है कि आप टकला कर दो मंदिर में बैठ जाओ, नहीं, जिस स्थान में हो, जिस जगह पर हो, जहां भी हो आप भक्ति कर सकते हो, चाहे ऑफिस में हो, स्कूल में हो, घर में हो, कहीं भी। भक्ति करने का अर्थ यह नहीं है कि सर मुंडवा कर इस देश का अच्छा नागरिक बनना है तो सबको वर्दी पहनने की आवश्यकता नहीं है। इस देश की गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करेंगे तो अच्छे नागरिक माने जाएंगे। दीपक प्रभु सिर हिला रहे क्योंकि बहुत कानून जानते हैं, इनकम टैक्स भरेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे तो नागरिक अच्छे हैं। अरे नहीं भरेंगे तो अच्छे नागरिक नहीं। ठीक उसी प्रकार भक्त बनना है तो भगवान के जो रूल्स और रेगुलेशन है उसका फॉलो कीजिए, आप भक्त कहे जाएंगे। और भगवान ज्यादा नहीं मांगते हैं, भगवान की बहुत कम मांगे हैं, बहुत कम मांगते हैं। चार नियम का पालन करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान के नाम का जप करो, इसी जीवन में आपको भगवान की प्राप्ति होगी। ये प्रभुपाद जी का कथन है। हरे कृष्णा 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 हरे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए भागवत सुनने के लिए।